रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। जनता का मन जीतने के हिसाब से काम करने का पार्टी की ओर से निर्वाचन स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने दिया निर्देश। कारागार विधेयक पारित होने के बाद कारागार और कैदी बंदी की कई समस्याओं का समाधान होगा, गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ का कथन। नेपाल में आज कोरोना के 888 नए मामले आए सामने, संक्रमित एक की हुई मौत। और भारत मना रहा है आज अपना 76वां स्वतंत्र दिवस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने कहा कि स्थानीय तह लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। स्थानीय तह निर्वाचन में पार्टी की ओर से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आज शुरू हुए दो दिनों के अभिमुखीकरण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा ने कहा कि लोकतंत्र की जंग को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय तह से कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व को चुनने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनता के लिए सबसे करीबी सरकार स्थानीय सरकार है। उन्होंने स्थानीय लोगों का मन जीतने का स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया। प्रधानमंत्री देउवा ने कहा कि शासक नहीं बल्कि सेवक के रूप में जनप्रतिनिधियों को काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री देउवा ने कहा कि हाल ही में संपन्न स्थानीय तह चुनाव की तरह ही आगामी निर्वाचन में गठबंधन को सफलता हासिल होगी। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ ने कहा कि देश भर के कारागारों की भौतिक संरचना बनाने की, कैदी बंदियों की न्यूनतम सुविधा व्यवस्थापन में सरकार आगे बढ़ी है। कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति की बैठक में गृहमंत्री खाड़ ने देश भर के कारागारों की क्षमता से अधिक कैदी बंदी रहने की बात को स्वीकार करते हुए कहा व्यवस्थापकीय में सुधार लाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि चार स्थानों में नए कारागार भवन का निर्माण किया जा रहा है और इस साल 8 नए कारागार भवन निर्माण के लिए बजट का विनियोजन किया गया है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने कहा कि देश की भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में परिचित कराने के लिए प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज काठमांडू में आयोजित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के 37वें प्रज्ञा सभा का आज उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री देउवा ने कहा कि नेपाली साहित्य और कला देश का श्रृंगार है। सत्ता गठबंधन की कार्यदल की आज हुई बैठक में और अधिक गृह कार्य कर आगामी बैठक में सीट बंटवारे का प्रस्ताव लाने की सहमति हुई। ये जानकारी कार्यदल के सदस्य एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने दी। नेकपा माओवादी केंद्र की स्थायी कमेटी की बैठक स्थगित हो गई है। अगली बैठक कल सुबह 8 बजे के लिए बुलाई गई है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने कहा कि अध्यात्म का विकास कर नेपाल को विश्व के सामने परिचित कराने की जरूरत है। आज महर्षि अरविंद के 150वीं जयंती के अवसर पर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री कार्की ने कहा कि अरविंद स्वामी द्वारा दिखाए रास्ते पर चलने से सभी तरह के विभेदों का अंत होगा। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता झलनाथ खनाल ने कहा कि नागरिकता विधेयक में सभी राजनीतिक दलों की साझा धारणा होना चाहिए। आज ईलाम में संचारकर्मियों के साथ बातचीत के दौरान नेता खनाल ने कहा कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण न करने के विषय में अध्ययन करने के बाद ही धारणा बनाना चाहिए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौड़ेल ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय में किसी भी तरह के शिक्षा संबंधी विधेयक पेंडिंग में नहीं है। आज प्रतिनिधि सभा की शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति की संसद सचिवालय की सिंह दरबार में हुई बैठक में मंत्री पौड़ेल ने कहा कि संसद के इसी कार्यकाल में संघीय शिक्षा विधेयक लाना चाहते हैं, लेकिन काम करने की परंपरागत शैली के कारण देरी हो रही है। बैठक में सांसदों ने संघीय शिक्षा आयन न होने से शैक्षिक क्षेत्र को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ ने कहा कि पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सिस्टम को व्यवस्थित और प्रभावकारी बनाया जाएगा। आज ट्रेकिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ नेपाल के 44वें वार्षिक साधारण सभा का उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन व्यवसायियों के साथ विचार विमर्श करके टीम्स के समस्या का जल्दी समाधान किया जाएगा। मंत्री श्रेष्ठ ने यह भी कहा कि आरोहण के लिए अभी खोले गए हिमाल के अलावा अतिरिक्त हिमाल तथा चुली खोलते जाने की सरकार की नीति है। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेर बहादुर कुंवर और इजराइल के राजदूत खनान गोदेर बीच दो देश बीच हुए श्रम समझौता के विषय में विचार विमर्श हुआ है। मंत्रालय में हुए विचार विमर्श में मंत्री कुंवर को राजदूत गोदेरे ने ये जानकारी साझा की। आज देशभर में 888 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 474 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। वहीं आज एक संक्रमित की मौत हो गई। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत आज आजादी का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। 83 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने देश के सामने 5 संकल्प रखे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाषा और लोकतंत्र का जिक्र किया। गांधी, नेहरू, सावरकर को याद कर नमन किया। नारी शक्ति के सम्मान और उनके गौरव की बात करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा, मैं एक पीड़ा जाहिर करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि शायद ये लाल किले का विषय नहीं हो सकता। मेरे भीतर का दर्द कह रहा हूं, वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है। हमारी बोलचाल, हमारे शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? पीएम ने कहा कि अगर हम अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए हमने कितना भी संघर्ष किया हो, उसके बावजूद भी जब आज हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं तो अगले 25 साल हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं लाल किले से 130 करोड़ लोगों को आह्वान करता हूं। साथियों, मुझे लगता है कि आने वाले 25 साल के लिए भी हमें उन 5 प्रण पर अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा। हमें 5 प्रण को लेकर 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठाकर चलना होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अरबपति प्रिंस अल्वालिद बिन तलाल के नियंत्रण वाली सऊदी अरब किंगडम होल्डिंग कंपनी ने फरवरी से मार्च महीने के दौरान रूसी कंपनियों में 500 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। ये जानकारी सऊदी कंपनी के रेगुलेटरी फाइलिंग के बाद सामने आई है। रूस की ये तीनों कंपनियां हैं गजप्रोम, रोजनेफट और लुकोइल। माना जा रहा है कि इस सऊदी अरब का ये निवेश रस्ती दरों पर हुआ है, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर लगी अमेरिकी पाबंदियों के मद्देनजर इन सौदों को देखा जा रहा है। सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देशों का अभी तक ये रुख रहा है, वे यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई में तटस्थ है। इसे रूस को अलग थलग करने की नीति पर आगे बढ़ रहे पश्चिमी देशों में निराशा का माहौल भी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनता का मन जीतने के हिसाब से काम करने का पार्टी की ओर से निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने दिया निर्देश। कारागार विधेयक पारित होने के बाद कारागार और कैदी बंदी की कई समस्याओं का समाधान होगा, गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ का कथन। नेपाल में आज कोरोना के 888 नए मामले आए सामने, संक्रमित एक की हुई मौत और भारत मना रहा है आज अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।